ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के दोनों सदनों से सरकार द्वारा लाए गए 5 अध्यादेश स्वीकृत। प्रतिनिधि सभा बैठक में एनजीओ और आईएनजीओ मार्फत नेपाल में आए सहयोग का विवरण सार्वजनिक करने के लिए विदेश में रहे नेपालियों की सुरक्षा और देश के विभिन्न भागों में रहे पेयजल की समस्या समाधान के लिए सांसदों ने की मांग। सरकार और निजी क्षेत्र के सहकार्य से समृद्धि हासिल किया जा सकता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और हमास को बंधक रिहा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा सरकार द्वारा लाए गए 5 अध्यादेशों को मंजूरी मिल गई है। प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में मंजूर किए गए इन 5 अध्यादेशों को राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में भी स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सुशासन प्रवर्धन और सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि और वित्तीय उत्तरदायित्व पहला संशोधन अध्यादेश 2081 और निजीकरण पहला संशोधन अध्यादेश 2081 को बहुमत से मंजूरी दी गई। इसके अलावा आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश वृद्धि से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले अध्यादेश और सहकारी से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले अध्यादेश को भी राष्ट्रीय सभा की बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि सरकार द्वारा लाए गए 6 अध्यादेशों में से भूमि से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले अध्यादेश 2081 को सभा में पेश नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सुशासन प्रवर्धन और सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित अध्यादेश पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार ने संवैधानिक रास्ते से देश की आवश्यकता के अनुसार अध्यादेश लाए हैं, इसलिए इन्हें अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह आर्थिक कार्यविधि और वित्तीय उत्तरदायित्व पहला संशोधन अध्यादेश 2081 पर चर्चा के दौरान उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने कहा कि इस अध्यादेश से योजना आयोग के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आयोग और मंत्रालय के बीच समन्वय और समझदारी के साथ बजट निर्माण का माहौल बना है। निजीकरण पहला संशोधन अध्यादेश 2081 पर चर्चा के दौरान अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को मजबूत बनाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के बारे में गलत व्याख्या करना उचित नहीं है। आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश वृद्धि से संबंधित अध्यादेश पर चर्चा के दौरान अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। सहकारी से संबंधित अध्यादेश पर चर्चा के दौरान भूमि प्रबंधन, सहकारी और गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में विकृतियों को दूर करने और बचतकर्ताओं की राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन को अगले वर्ष से सरकार के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्भाशय के मुख्य कैंसर के खिलाफ एचपीवी वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक उम्र की किशोरियों और महिलाओं को भी लगाया जा सकता है। मंत्री पौडेल ने यह भी बताया कि अब तक 14,46,601 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश की थी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में निकासी पैठारी नियमन विधेयक 2081 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब में उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और नेपाली उत्पादों के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये विधेयक पेश किया है। चर्चा में सांसदों ने सरकार के बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादों पर जोर देने, सीमा शुल्क बिंदुओं को व्यवस्थित बनाने और खुले सीमा से होने वाली चोरी छुपे निकासी को नियंत्रित करने के लिए निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद रामहरि खतिवड़ा ने एनजीओ और आईएनजीओ के माध्यम से आए सहयोग और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में हुए निवेश की वास्तविक जानकारी प्रदान करने की मांग की। सांसद देवेंद्र पौडेल ने विदेश में रह रहे नेपालियों की सुरक्षा और सम्मानपूर्वक वापसी के लिए सरकार से तत्काल विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय सेल गठित करने पर पहल करने का आग्रह किया। सांसद लाल प्रसाद सावलिम्बू ने झापा के शिव सताक्षी नगर पालिका के कैम्ब्रिज बोर्डिंग स्कूल के प्रांगण में खड़ी बस के जलने की घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद हरि ढकाल ने एलपी गैस से जुड़ी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को समझने में विफल रही है ये कहा। सांसद माधव सापकोटा ने शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करते हुए उन्हें सम्मानजनक तरीके से अध्यापन करने का वातावरण तैयार करने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर ले जाने का विकल्प नहीं है। आज मोहतर की गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 1 रामनगर में नेपाल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि औद्योगिक विकास और रोजगारी सृजना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ओली ने हुलाकी राजमार्ग सुनकोशी मरीम डायवर्शन लगायतों के परियोजना जल संपन्न करने की प्रतिबद्धता जताई। नेपाल कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि नेपाल के सभी लोकतांत्रिक आंदोलन में भूतपूर्व सैनिक द्वारा पहुंचाए गए योगदान महत्वपूर्ण है। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी भातृ एवं सुवेक्षुक संस्था मजबूत होने से ही पार्टी मजबूत होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को आखिरी चेतावनी दी है। हमास ट्रंप पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो युद्ध विराम समझौता तोड़ने के लिए इसराइल को उकसा रहे हैं। हमास को चेतावनी देने वाला ट्रंप का बयान व्हाइट हाउस के उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि बाकी बचे बंधकों की रिहाई के लिए वो हमास से सीधे बात कर रहा है। इसराइल ने कहा कि अभी भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं, इनमें से 24 के जीवित होने की संभावना जताई गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के दोनों सदनों से सरकार द्वारा लाए गए 5 अध्यादेश स्वीकृत। प्रतिनिधि सभा बैठक में एनजीओ और आईएनजीओ मार्फत नेपाल में आए सहयोग का विवरण सार्वजनिक करने के लिए विदेश में रहे नेपालियों की सुरक्षा और देश के विभिन्न भागों में रहे पेयजल की समस्या समाधान के लिए सांसदों ने की मांग। सरकार और निजी क्षेत्र के सहकार्य से समृद्धि हासिल किया जा सकता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और हमास को बंधक रिहा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीन चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।